بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پرستت ہے۔ شروتاؤں، آج کے کارکرم کے آرمبھ میں آپ سورہ فصلت کی 30ویں سے لے کر 33ویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عباس امام جمعہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے اور پھر اس پر دڑھتا پوروک جمے رہے، ان پر فرشتے یہ سندیش لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی شوکا کل ہو اور اس سورگ سے پرسن ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم سانسارک جیون میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور پرلے میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں اچھا ہوگی، और यहाँ तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जिसकी तुम मांग करोगे। ये अत्यंत क्षमाशील और दयावान ईश्वर की ओर से तुम्हारे आतिथ्य का साधन है। और उस व्यक्ति से अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को ईश्वर की ओर बुलाए, अच्छे कर्म करे और ये कहे कि निश्चित रूप से मैं उसके आज्ञाकारी बंदों में से हूँ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप 60 में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज मंगलवार है, तीर की 14, जिलेजा की 5 और जुलाई की भी 5 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे जैविक हथियारों का खतरा और अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से। तो ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि इसराइली अधिकारी सपने में भी ईरान पर हमले की बात नहीं सोच सकते। चाबहार बंदरगाह के विकास पर ईरान और भारत ने बल दिया है। महातीर मोहम्मद ने चेतावनी दी है कि एशिया में फिर से वित्तीय संकट दस्तक दे रहा है। आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका में स्कूल बंद हो गए हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के उप विदेश मंत्री और परमाणु वार्ताकार अली बाखरी कनी ने कहा है कि इसराइली अधिकारी सपने में भी ईरान पर हमले की बात नहीं सोच सकते। यमन के अल मसीरा टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान जब बागरी कनी से इसराइल की धमकियों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ज़ायोनी सपने में भी ईरान पर हमले की बात नहीं सोच सकते। अगर कभी वो सपने में ऐसा देख भी लेंगे तो फिर कभी नींद से जाग नहीं पाएंगे। गौरतलब है कि इसराइल पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में ईरानोफोबिया को हवा दे रहा है और ईरान को हाशिए पर डालने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को बदलना चाहता है। इसराइल का प्रयास है कि अपने अवैध वजूद को बचाने के लिए ईरान के खिलाफ क्षेत्र में एक गठबंधन का गठन करे। ज़ायोनी शासन अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी इलाकों में और दुनिया भर में यहूदियों के दिलों में भय उत्पन्न करना चाहता है ताकि अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। पिछले एक दशक के दौरान इसराइली अधिकारियों ने कई बार ईरान के खिलाफ हमले की धमकी दी है और ईरान के हितों के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है।
ईरान और भारत के उप विदेश मंत्रियों ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में चाबहार बंदरगाह के विकास समेत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। भारत के लिए ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत स्थित चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों तक समुद्री पहुंच के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इस बंदरगाह को इस क्षेत्र के लिए एक मूल्यवान वाणिज्यिक पारगमन केंद्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। चाबहार बंदरगाह क्षेत्र के लैंड लॉक देशों के लिए भारत और विश्व बाजार तक पहुंचने का एक अधिक किफायती और टिकाऊ तरीका है। ईरान के उपविदेश मंत्री अली बाकरी गनी ने अपने भारतीय समकक्ष विनय मोहन क्वात्रास के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों अधिकारियों ने चाबहार बंदरगाह समेत द्विपक्षीय हितों से संबंधित मुद्दों के महत्व पर बल दिया। इसी के साथ दोनों उपविदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया।
मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने कहा है कि 1997 में एशिया का वित्तीय संकट फिर से दस्तक दे सकता है। 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के 25 साल पूरे होने पर महाथिर मोहम्मद ने एशिया निकेई को दिए इंटरव्यू में कहा कि ये संकट फिर से दस्तक दे सकता है क्योंकि चीजें बदलनी नहीं है। महाथिर मोहम्मद ने कहा, यहाँ कई लोग अब भी मुद्रा बाजार की होड़ में शामिल हैं, ऐसे में नियम और नैतिकता की बात पीछे छूट जाती है। आप शायद मुद्रा की कीमत कम करना चाहते हैं लेकिन दूसरे लोग इसकी कीमत बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे को काटते रहते हैं। पिछले 25 वर्षों में मुद्रा बाजार गुब्बारे की तरह फूला है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के सर्वे के अनुसार 2019 में औसत फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग एक दिन में 6.6 ट्रिलियन डॉलर की थी। ये 90 के दशक के मध्य से 5 गुना ज्यादा थी। महाथिर मोहम्मद 1981 से 2003 तक मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने कहा कि करेंसी ट्रेडर्स अब भी बहुत मजबूत हैं और ये किसी खास मुद्रा को कमजोर बनाने का काम करते रहते हैं। महाथिर ने कहा कि ये विकसित अर्थव्यवस्था जैसे ब्रिटेन और इटली से काम करते हैं और सालों से मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते रहते हैं। 1997 के संकट में मलेशिया उन देशों में से एक था जो इस संकट की चपेट में थे। वहां की मुद्रा रिंगिट में 50% की गिरावट आई थी। मलेशिया के स्टॉक मार्केट इंडेक्स 75% गिरा था और बाजार से विदेशी मुद्रा निवेशकों ने निकाल लिया था।
ईंधन की कमी के कारण श्रीलंका में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इससे पहले भी ईंधन की कमी के कारण श्रीलंका में स्कूलों को बंद किया जा चुका है। फिलहाल वहां पर स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पैसों की कमी के कारण कोई भी ईंधन का आपूर्तिकर्ता श्रीलंका को ईंधन देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि देश में मौजूद ईंधन कुछ दिनों तक ही चल पाएगा, जिसको आवश्यक सेवाओं के लिए विशेष किया गया है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेकरा ने बताया कि देश पर ईंधन के कई आपूर्तिकर्ताओं का लगभग 80 करोड़ डॉलर बाकी है, जिसके कारण वे आगे ईंधन देने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना था कि देश पर भारी कर्ज के कारण कोई भी श्रीलंका को उधार ईंधन देने के लिए हामी नहीं भर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में ईंधन के भुगतान के लिए पैसा जुटाना बहुत बड़ी चुनौती है। कंचना विजयसेकरा ने श्रीलंका से बाहर रहने वाले नागरिकों से अपील की है कि वे लोग कमाए गए पैसे को अनौपचारिक माध्यमों के बजाय केवल बैंकों के माध्यम से ही भेजें, ताकि देश के भीतर पैदा हुए विदेशी मुद्रा संकट को दूर किया जा सके। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश की मुख्य समस्या डॉलर की कमी है। इसी बीच श्रीलंका के अधिकारियों ने सोमवार से इस देश में रोजाना 3 घंटे की बिजली कटौती की घोषणा की है, क्योंकि बिजली उत्पादन के संयंत्रों को वे पर्याप्त ईंधन की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं।
रूस का कहना है कि सीरिया पर इसराइल के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी करके सीरिया पर ज़ायोनी शासन के हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान प्रेस के अनुसार इस बयान में इसराइली हमले की निंदा के साथ ये भी कहा गया है कि सीरिया पर हमले को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। रूस के अनुसार ये हमले सीरिया की संप्रभुता का हनन और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध हैं। ज्ञात रहे कि ज़ायोनी शासन के युद्धक विमानों ने शनिवार को सीरिया के दक्षिणी प्रांत तरतूस के हमीदिया क्षेत्र पर हमला किया था। इस हमले में सीरिया के दो नागरिक घायल हो गए थे। रूस के इस बयान से पहले सीरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके ज़ायोनी शासन के हमलों की कड़ी निंदा की थी।
रूस का कहना है कि जब तक यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी उस समय तक युद्ध नहीं रुक सकता। रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध को जारी रखने का आदेश दिया है। यूक्रेन के लिसिचांस्क पर पूरी तरह से नियंत्रण के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आदेश दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहे। रूस पहले से ये कहता आ रहा है कि अमरीका और पश्चिम की ओर से जब तक यूक्रेन के लिए हथियारों की आपूर्ति जारी रहेगी उस समय तक युद्ध का रोका जाना संभव नहीं है। उसका कहना है कि हथियारों की यही आपूर्ति युद्ध के लंबे खींचने का कारण बनी हुई है। व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को रूसी रक्षा मंत्री के साथ भेंट में रूसी सैनिकों को आदेश दिया है कि यूक्रेन में सैन्य अभियान को जारी रखा जाए। उल्लेखनीय है कि सप्ताहों तक चली लड़ाई के बाद रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के लिसिचांस्क नगर पर कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिकों के साथ हफ्तों की भारी लड़ाई के बाद यूक्रेन के सैनिक पूर्वी शहर लिसिचांस्क से पीछे हट गए हैं। लिसिचांस्क लुहांस्क क्षेत्र का मात्र एक शहर था जो यूक्रेन के कंट्रोल में था। अब यहां से यूक्रेनी सेना के पीछे हटने के बाद रूस का पूरे लोहांस पर कब्जा हो गया है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोतो, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध आरंभ हुए लगभग 4 महीने का समय हो चुका है, पर ये युद्ध जारी है और दोनों तरफ से भारी तबाही हुई है। इस तबाही और इस युद्ध के लंबा खींचने की एक बहुत बड़ी वजह पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई है और उसके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ इस युद्ध के जारी रहने के खतरों के प्रति चेतावनी देते हुए तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई है। इसराइली सेना और सरकार ने हर ओर से फिलिस्तीनियों पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि फिलिस्तीनी जियालों ने भी इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। फिलिस्तीनियों ने कहा है कि मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मुकद्दस हमारी रेड लाइन है और इनका अनादर और इनके अतिग्रहण की अनुमति कभी नहीं दे सकते।
फौजी लिहाज से भी बल्कि सियासी लिहाज से भी बहुत ज्यादा ताकत पा रहे हैं।
गुपकार अलायंस ने कहा है कि वो संभावित आगामी विधानसभा चुनाव को एकजुट होकर लड़ेगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जो घटनाएं घट रही हैं उसके दृष्टिगत ये कहा जा सकता है कि शांति स्थापित करने में प्रशासन विफल रहा है।
विजिलेंटीज हैं जिन्होंने इखलाक को मारा।
श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध आरंभ हुए लगभग 4 महीने का समय हो चुका है, पर ये युद्ध जारी है और दोनों तरफ से भारी तबाही हुई है। इस तबाही और इस युद्ध के लंबा खींचने की एक बहुत बड़ी वजह पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई है और उसके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ इस युद्ध के जारी रहने के खतरों के प्रति चेतावनी देते हुए तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई है। समीक्षा पेश करें साथ ही कायम रिजवी।
बर्लिन में हजारों लोगों ने यूक्रेन हथियार भेजे जाने के विरोध में प्रदर्शन किए हैं। यूक्रेन युद्ध के आरंभ से ही पश्चिमी देश विशेषकर अमरीका यूरोप के लिए हथियार भेज रहे हैं। अब तक यूक्रेन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हथियार भेजे जा चुके हैं। अब इस काम का यूरोप के भीतर से विरोध होने लगा है। इसी विषय के दृष्टिगत जर्मन वासियों ने इस देश की राजधानी में प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में प्ले कार्ड थे जिन पर यूक्रेन के लिए हथियार भेजे जाने के विरोध में नारे लिखे हुए थे। इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन इटली में भी किए जा चुके हैं। जब से यूक्रेन युद्ध आरंभ हुआ है उस समय से पश्चिमी देशों ने इस युद्ध में सीधे ढंग से हस्तक्षेप तो नहीं किया, किंतु उन्होंने यूक्रेन को आर्थिक सहायता के साथ ही साथ बड़े पैमाने पर विध्वंसक हथियार भेजे हैं। इसी वजह से युद्ध अब केवल यूक्रेन के विरुद्ध न होकर रूस और पश्चिम के बीच लड़ाई में परिवर्तित हो चुका है। रूस ने पहले ही कह दिया है कि यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई इस युद्ध के लंबा होने का कारण बनी है और ये विश्व युद्ध की भूमिका भी बन सकती है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को वास्तविक बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को आगे बढ़ाकर नेटो रूस के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त है। इसी बीच नेटो के समर्थन की आड़ में जर्मनी यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। इसी बीच जर्मनी के चांसलर ने यूक्रेन के लिए कुछ नए और आधुनिक हथियार भेजने का वादा किया है। उधर जर्मनी के रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि देश के हथियारों के संचालन के उद्देश्य से यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। हालांकि जर्मनी यूक्रेन युद्ध में रूस के विरुद्ध खड़ा दिखाई दे रहा है, किंतु इस समय उसको गंभीर आर्थिक संकट का सामना भी है। इस बारे में जर्मनी के वित्त मंत्री कह चुके हैं कि आगामी कुछ महीनों में ये स्थिति अधिक खराब हो सकती है। बहुत से जर्मन वासी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि बढ़ती महंगाई के कारण वे भविष्य में किस प्रकार से अपने जीवन का संचालन कर पाएंगे। वहां पर इस समय ईंधन के मूल्यों में वृद्धि हुई है जिसके कारण खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। वे देश जो यूक्रेन के लिए हथियार भेज रहे हैं उनमें से अधिकांश को इस समय सख्त आर्थिक संकट का सामना है। जर्मनी में ऊर्जा का संकट इस समय अपने चरम पर है। इस ऊर्जा संकट के कारण जर्मनी का औद्योगिक ढांचा टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। जर्मनी में ऊर्जा संकट और ईंधन के अभाव के कारण लोगों में गुस्सा पाया जाता है। जब से रूस ने ये चेतावनी दी है कि जर्मनी के लिए भेजी जाने वाली गैस की सप्लाई जुलाई के अंत तक पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी, तब से जर्मनी के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन गया है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
इसराइली सेना और सरकार ने हर ओर से फिलिस्तीनियों पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि फिलिस्तीनी जियालों ने भी इसराइल के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। फिलिस्तीनियों ने कहा है कि मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मुकद्दस हमारी रेड लाइन है और इनका अनादर और इनके अतिक्रमण की अनुमति कभी नहीं दे सकते। फिलिस्तीनी प्रतिरोध के मुकाबले में इसराइल की सुरक्षा कमजोरी हालिया दिनों में दुनिया में सामने आ गई है। निरंतर खबरों में आ रहा है कि इसराइल के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सेंटर्स और संस्थानों की साइटों को आए दिन हैक कर लिया जाता है। इसमें प्रतिरोध की शक्ति और उसकी मजबूती को कितना देख रहे हैं, विचार सुनिए पाकिस्तान के टीकाकार मुबशीर میر کے.
سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ جو ہم نے ایک اتنی لمبی سٹرگل جو ہے, ہم کئی نسلیں جو ہیں اس میں جو ہے انہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں, اپنی قربانیاں دی ہیں, ہم ان کو خراج تحسین کی اتنی لمبی سٹرگل جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اتنی طاقتور ایک پاور کے سامنے کہ جو ہر قسم کے جو صرف فوجی لحاظ سے بھی بلکہ سیاسی لحاظ سے بھی بہت زیادہ طاقتور ہے, جس کو دنیا کی طاقتور ترین ایک قوم کا جو ہے اور ایک پاور کا جو ہے وہ سہارا ہے, اس کا ساتھ ہے, اس کے مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اتنی یعنی کہ قلیل تعداد میں لوگ اور اتنی یعنی کہ نہتے اس لحاظ سے کہ جن کے پاس جو ہے وہ دنیا کا لیٹسٹ کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں ہے, لیکن ان کے پاس جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان کا جذبہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس جذبے کو جو ہے وہ کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ سرنگون ہی کر سکے. سب سے اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اندر خوف ہوتا ہے نا, ایک موت کا خوف, موت کا خوف ختم ہو چکا, اور جو ہمیں 12 سال 9 سال 10 سال کا بچہ بچی نظر آتا ہے جو اتنی طاقتور فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار کھڑا نظر آتا ہے, اس استقامت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں اس میں دنیا کی میں اس کی کوئی مثال نہیں.
گپکار الائنس نے کہا ہے کہ وہ سمبھاوت آگامی ودھان سبھا چناؤ کو ایک جٹ ہو کر لڑے گا. جموں کشمیر کی پورو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں اس کے درشٹگت یہ کہا جا سکتا ہے کہ شانتی استھاپت کرنے میں پرشاسن وفل رہا ہے. پوری جانکاری کے ساتھ شری نگر سے سپتے محمد حسن.
مین اسٹریم گٹھوں کے گٹھ بندھن گپکار الائنس نے کہا ہے کہ وہ آنے والے سمبھاوک ودھان سبھا چناؤ ایک جٹ ہو کر لڑیں گے. سری نگر میں پی ڈی پی ادھیکشا محبوبہ مفتی جو جموں کشمیر کی بھوتپورو مکھیہ منتری بھی ہیں نے کہا ہے کہ جس طرح سے گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں اور جو بھی سامنے آ رہا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ جو موجودہ پرشاسن ہے ان کے انوسار وہ زمینی استر پر شانتی استھاپت کرنے میں اسفل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ حال ہی میں جموں پرانت کے ریاسی میں جو ویکتی گرفتار کیا گیا جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ لشکر طیبہ کا آتنکوادی ہے, وہ پہلے بی جے پی کا ایک سدسیہ ہوا کرتا تھا اور اس پر پرشن چن بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہی ویکتی ہماری پارٹی سے ہوتا تو پتہ نہیں کیا بن پاتا. انہوں نے کہا کہ ہمارے دل کا ہونا ہمارے لیے مصیبت بن جاتا, پرنتو اب اس کے تمام رشتے بھاجپا سے بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے ورودھ میں کوئی کاروائی نظر نہیں آ رہی ہے.
دیکھیے جو کاویجلانٹیز ہیں جنہوں نے اخلاق کو مارا, اس کے بعد ان کو پھولوں کے ہار کس نے پہنا ہے؟ بی جے پی کے منسٹر نے پہنا ہے. اسی طرح جو ادے پور میں جس نے قتل کیا, بہیمانہ قتل کیا, شاید اس کا نام ریاض ہے, وہ کس سے منسلک ہے؟ بی جے پی کے ساتھ ہے. بی جے پی کا وہ فوٹو دیکھی ہوگی آپ نے اس کی, بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ. اسی طرح جو ابھی یہاں طالب حسین پکڑا گیا, ایل ای ٹی کا ملیٹنٹ ہے, وہ بی جے پی کی آئی ٹی سیل کا انچارج ہے. تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی جو ہے, جو بھی سوسائٹی میں جو کرمنل ایلیمنٹ ہے, جو بدنام لوگ ہیں, جو شرارتی لوگ ہیں, ان کو اپنی پارٹی میں ان کو سہارا دیتی ہے اور اس کے بعد انہی سے ایسے کام کرواتی ہے جس سے ہندو مسلمان میں آپس میں فساد ہوتا ہے. ابھی جو ادے پور میں جو بہیمانہ قتل ہوا ہے تو اس سے بڑی زیادتی تو نہیں ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ, مگر جو جس نے قتل کیا وہ بھی بی جے پی کا رکن ہے. اسی طرح جس نے اخلاق کو جو انہوں نے یا باقی جو گائے کا ماس کھانے کے لیے جنہوں نے لوگوں کو مسلمانوں کو مارا, اس کے بعد
انہوں نے کہا کہ ان کے صفوں میں آتنکوادی ہونا یہ اب ضروری ہے کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے.
سبتی محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں. اب پرستوت ہے اگلا کاریکرم, جیوک ہتھیاروں کا خطرہ.
जैविक युद्ध का खतरा।
दोस्तों, कार्यक्रम जैविक युद्ध का खतरा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
आज दुनिया के सामने ऐसे खतरे मुंह बाए खड़े हैं जिनसे पूरी मानवता की सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई है। ऐसे ही खतरों में से एक जैव आतंकवाद का खतरा है, जो आतंकवाद और रासायनिक हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है। जैव आतंकवाद में दुश्मन ऐसे विनाशकारी और गुप्त कार्यों को अंजाम देता है जिसे रोकना बहुत मुश्किल होता है, और उसका पता लगाना और उसका मुकाबला करना उससे भी अधिक कठिन। जैव आतंकवाद समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिए ही खतरनाक होता है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के स्पष्ट उल्लंघन के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम जैविक हमलों से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने आने वाली चुनौतियों की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ हम जैविक हथियारों के बारे में रूसी और अमरीकी दृष्टिकोणों पर एक नजर डालेंगे।
1991 में संयुक्त सोवियत संघ के पतन के बाद रूसी फेडरेशन को सामूहिक विनाश के हथियार विरासत में मिले। रूस ने हथियारों को नियंत्रण करने वाले समझौते को लागू किया और वो रणनीतिक हथियारों को सीमित करने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बन गया। इस कार्यक्रम के तहत उसने अपने कुछ हथियारों को नष्ट भी किया। रूस के पास कितने हथियार हैं इस बारे में पारदर्शिता अपनाई गई। वर्तमान में रूस अपने हथियारों का पुनर्निर्माण कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौर से ही सोवियत संघ का परमाणु कार्यक्रम शुरू हो गया था। 1949 में इस देश ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। ये देश NPT संधि का सदस्य है, लेकिन इसके पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं। जैविक हथियारों के क्षेत्र में सोवियत संघ ने 1920 से 1928 तक प्रयास किए थे। हालांकि 1972 में वो जैविक हथियारों की रोकथाम के कन्वेंशन में शामिल हो गया, जिसे 1975 में पारित कर दिया गया। 1992 में रूस ने जैविक हथियारों के निर्माण की बात स्वीकार की थी।
शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के पास विश्व में सबसे ज्यादा रासायनिक हथियार थे। इनमें दम घोटने वाले बम और मिसाइल, ब्लिस्टर, मस्टर्ड और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे हथियार शामिल हैं। मॉस्को रासायनिक हथियारों के विनाशकारी प्रभाव को बढ़ाने में भी सफल रहा है, और उसने न्यूरोकेमिकल गैसों की शक्ति को 5 गुना तक बढ़ाने में सफलता हासिल की है। हालांकि जैविक हथियारों पर रूस की गतिविधियां अपारदर्शी और संदिग्ध हैं, इसके बावजूद रूसी रक्षा मंत्रालय इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाता रहा है। चीन में कोविड-19 के फैलने और पूरी दुनिया को तेजी से चपेट में लेने के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके घोषणा की थी कि पेंटागन ने रूस की सीमा पर जॉर्जिया में जैविक हथियारों की प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, जो मॉस्को और बीजिंग के लिए खतरा हैं।
रूसी अधिकारियों का मानना है कि जॉर्जिया में अमेरिका के जैविक हथियारों की प्रयोगशालाएं, जो मानव सहायता के बहाने कार्य कर रही हैं, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं। जॉर्जिया में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और जैविक संधियों के उल्लंघन के बारे में रूस की चिंताओं की पुष्टि जॉर्जिया के खुफिया मामलों के पूर्व मंत्री द्वारा मॉस्को को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण से भी हो जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस से लगने वाली जॉर्जिया की सीमा पर पिछले एक दशक के दौरान जो अफ्रीकी प्लेग महामारी फैली है, वह अमरीकी प्रयोगशालाओं से निकली है, जिससे रूस को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से $55 बिलियन का नुकसान हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अमेरिका माइक्रोबायोलॉजिकल और रासायनिक हथियारों के उपयोग की संधि के कुछ प्रावधानों को दरकिनार करके शांतिपूर्ण अनुसंधान के बहाने अपनी जैविक और रासायनिक क्षमताओं में वृद्धि का प्रयास कर रहा है।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों ने बड़े पैमाने पर जैविक हथियारों का निर्माण किया। 1940 में अमरीका के रक्षा मंत्री ने तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति से जैविक हथियारों पर अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के निर्माण की मांग की थी। 1943 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अमरीकी जैविक हथियारों के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जैविक हथियारों के अमरीकी कार्यक्रम का आधार सैन्य गतिविधियों पर रखा गया और इन हथियारों का उत्पादन अनुसंधान संस्थानों के स्तर से आगे बढ़ाकर सैन्य प्रयोगशालाओं के स्तर पर शुरू हो गया।
पूरे मानव समाज के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर देने वाले मुद्दों में से एक जैविक हथियार है। इस समस्या के अलग अलग पहलुओं की समीक्षा पर आधारित है कार्यक्रम जैविक युद्ध का खतरा। हर हफ्ते मंगलवार को
पचास के बाद भी अमेरिका का जैविक हथियारों के निर्माण का कार्यक्रम जारी रहा, यहाँ तक कि 1969 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने एक अध्ययन में कहा कि जैविक हथियार कार्यक्रम से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये प्रतियोगिताओं के लिए समान अवसर प्रदान करता है। जनता के दबाव और अमेरिका में जैविक गतिविधियों के विनाशकारी प्रभावों पर आधारित एक रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद निक्सन प्रशासन ने जैविक हथियार कार्यक्रम को बंद कर दिया और 1972 में जैविक हथियारों के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए। 1943 में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक जैविक हथियारों पर सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च किए, विशेष रूप से अनुसंधान और विकास कार्यों पर। निक्सन शासन में जैविक हथियार कार्यक्रम की समाप्ति तक अमेरिका हर वर्ष इस पर लगभग 300 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा था।
कोरियाई युद्ध में अमेरिका की विनाशकारी जैविक गतिविधियों पर काफी शोध हुआ है। इन शोध कार्यों को दो पुस्तकों कोरिया अज्ञात युद्ध और अमेरिका और जैविक युद्ध के रूप में सामने आया है। इस शोध में 1952 में वाशिंगटन द्वारा जैविक हथियारों के उपयोग की पुष्टि की गई है। इसी प्रकार अमरीकी विद्वान नोम चॉम्स्की के अनुसार इस बात के भी पर्याप्त सबूत हैं कि वाशिंगटन ने क्यूबा के खिलाफ जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया है। 1962 में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंटों ने क्यूबा को निर्यात की जाने वाली चीनी की एक खेप को दूषित कर दिया था। इसके अलावा क्यूबा में टर्की मुर्गियों को न्यू कैसल रोग से संक्रमित करने की एक योजना पर भी काम किया गया। 1971 में क्यूबा सरकार ने देश के पश्चिमी इलाकों में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के फैलने के बाद अमेरिका को इसके लिए दोषी ठहराया और वाशिंगटन पर जैविक हमले का आरोप लगाया था।
कहा जा सकता है कि जैविक हथियारों के निर्माण और उनके इस्तेमाल में बड़ी शक्तियों की भूमिका काफी स्पष्ट रही है। जैविक हथियारों का सैन्य इस्तेमाल काफी पुराने जमाने से होता रहा है, लेकिन दूसरे विश्व के बाद बड़ी शक्तियों ने इसे अपना प्रमुख हथियार बना लिया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के पास जैविक हथियारों की सबसे ज्यादा क्षमता है। अमेरिका के पास इसका एक व्यापक कार्यक्रम रहा है और जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं कि वाशिंगटन कोरिया युद्ध में और क्यूबा के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर चुका है।
उन्नीस सौ सत्तर के दशक में निक्सन द्वारा जैविक हथियारों के कार्यक्रम को बंद करने के ऐलान के बावजूद ऐसा लगता है कि आज भी अमेरिका खुफिया रूप से दूसरे कार्यक्रमों के बहाने इसे जारी रखे हुए है। फरवरी 2020 में रूसी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सैन्य प्रयोगशालाओं में 30 रूसी नागरिकों पर प्रयोग किए ताकि उसके परिणामों से रूसी सीमाओं के निकट जैविक हथियारों के निर्माण में लाभ उठा सके। जॉर्जिया में अमरीकी लोगर केंद्र के दस्तावेजों के मुताबिक अमरीका ने ड्रोन विमानों के जरिए ऐसे कीड़े मकोड़े छोड़े हैं जिनसे कीटाणुओं को फैलाया जा सकता है।
حالانکہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ کیا کووڈ 19 وائرس جیوک ہتھیار ہے یا نہیں، لیکن روس اور کئی انیہ دیشوں کے نیتا اور ویگیانک مانتے ہیں کہ یہ امریکہ کا ایک جیوک ہتھیار ہے جو امریکی سینیہ پریوگشالاؤں سے پھیلا ہے۔ اس سندر میں روس کے اپسنسد سبھاپتی کا کہنا ہے، دنیا میں کورونا پھیلانے کا اصلی گنہگار امریکہ ہے۔ واشنگٹن کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں بیجنگ اسے آرتھک روپ سے نہ پچھاڑ دے، یہ دیش جیوک ہتھیاروں کے نرمان میں لگا ہوا ہے۔
کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ چین اور امریکہ کے سمبندوں اور اس وائرس کے پھیلنے کے سمے کے مد نظر یہ درشٹی کون کافی مہتوپورن ہے کہ کووڈ 19 ایک جیوک ہتھیار ہے۔ اس سے پہلے کے ورشوں میں بھی چین پر امریکہ کے جیوک حملوں کے چنہ ملتے ہیں۔ 2019 میں چین کے ودیش منترالے نے ایک بیان جاری کر کے امریکہ سے مانگ کی تھی کہ ووہان استھت امریکی کونسولیٹ میں اس نے جو کوڑا دبایا تھا اس کے بارے میں وہ اسپشٹیکرن دے۔ چینی سرکار کا کہنا تھا کہ اسے 8 سندگھ جیوک کینسٹر ملے ہیں جنہیں کونسولیٹ کے اندر 1.5 میٹر کی گہرائی میں دبایا گیا تھا۔
حالانکہ وبھن کارنوں سے جیوک یدھ اور اس میں استعمال ہونے والی تکنیک کی سٹیک سمیکشا ایک کٹھن کاریہ ہے، جیسے کہ ان گھٹناؤں کا صحیح ریکارڈ نہیں رکھنا، سندگھ گھٹناؤں کو جان بوجھ کر یا انجانے میں انجام دیا گیا ہے، اس کی جانکاری کا نہیں ہونا یا سرکاروں دوارا سوبو چھپانا، ایسے ہی کچھ کارن ہیں۔ لیکن یہ نشچت ہے کہ دوتیہ وشو یدھ کے بعد بڑی شکتیوں وشیش روپ سے امریکہ نے جیوک ہتھیاروں پر پرتبندوں کے کنونشن کا پالن کرنے کے دعووں کے باوجود ان ہتھیاروں پر شوھ کیے ہیں اور انہیں وکست بھی کیا ہے۔ اس طرح سے ان شکتیوں نے دنیا کی سرکشا کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تو دوستو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
श्रोताओं, अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम कुरानी किस्से।
कुरानी किस्से।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरह कहफ की आयत नंबर 109 और 110 आयतें कब नाजिल हुई थी। मरियम मेरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
دوستوں، مہان ایشور نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس سمے عرب جگت میں اپنا دودھ بنا کر بھیجا، اس سمے عرب سماج میں وبھن پرکار کی برائیاں پرچلت تھیں۔ عربوں میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، سود کھانا، مردار کھانا، اس پرکار کی برائیاں پرچلت تھیں۔ یہاں اس بات کا الیکھ کرتے چلیں کہ ایسا نہیں تھا کہ سارے عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اگر سارے عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تو عرب سماج ہی ختم ہو جاتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں کچھ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس کام پر کوئی بھی ایسا کرنے والے کی بھرسنا نہیں کرتا تھا۔ عرب میں لوگ قبیلے کے لحاظ سے سوئم کو دوسرے سے شریشٹھ سمجھتے تھے، یعنی شریشٹتا کا ماپدنڈ قبیلہ اور ونش تھا، جبکہ ایشوریہ دھرم اسلام نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا اور مہان ایشور نے کہا ہے کہ شریشٹتا کا ماپدنڈ تقوی ارتھات مہان ایشور سے بھے ہے۔ دوسرے شبدوں میں، جس انسان کے اندر جتنا ادھک ایشوریہ بھے ہوگا، اس کا استھان مہان ایشور کے نکٹ اتنا ہی ادھک ہوگا۔ اسلام دھرم، مال دولت، ونش، رنگ اور قبیلے آدی کو شریشٹتا کا ماپدنڈ نہیں مانتا۔
جب مہان ایشور نے ابرہا کی بھاری سینا کو تباہ کر دیا تو لوگوں کی نظروں میں قریش قبیلے کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ اسی آدھار پر قریش نے دھیرے دھیرے حج سنسکاروں میں بدعت کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنی طرف سے جو چیزیں حج میں نہیں تھیں اسے حج کا بھاگ بنانے لگا۔ قریش قبیلہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا ضروری ہے اور یہ حج کے سنسکاروں میں سے ہے اور حاجیوں کے لیے اپاسنا کا وشیش ستھان ہے۔ اس کے باوجود اس نے عرفہ میں ٹھہرنے کو چھوڑ دیا۔
روچک بات یہ ہے کہ قریش قبیلے نے عرفہ میں ٹھہرنے کو ان لوگوں کے لیے انیواری کر دیا جو قریش نہیں تھے، اور سوئم کو اس انیواری کام سے ہٹا لیا۔ اس کے اوچت میں کہا کہ ہم ابراہیم کی سنتان ہیں اور ہم اہل حرم اور کعبے کے سیوک ہیں، ہمارے لیے یہ اچت نہیں ہے کہ ہم حرم کے باہر جائیں اور غیر حرم کو حرم جیسا سمجھیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہر چیز عربوں کے نکٹ ہمارے استھان کو کم کر دے گی۔ بہرحال یہ پرمپرا اسی طرح جاری تھی، یہاں تک کہ مہان ایشور نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کی گھوشنا کی۔
پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ بھی دوسری جاتیوں و قوموں سے سوئم کو شریشٹھ سمجھتے تھے۔ جن کارنوں سے یہودی سوئم کو دوسروں سے شریشٹھ سمجھتے تھے ان میں سے ایک کارن پوتر آسمانی کتاب تورات کا ہونا تھا۔ تورات میں پہلے کے پیغمبروں اور قوموں کی کہانیوں کو بیان کیا گیا ہے، اسی پرکار اس کتاب میں بھوشیہ میں ہونے والے کچھ گھٹناؤں کی بھی سوچنا دی گئی ہے۔ چونکہ تورات یہودی قوم کے ودوانوں کے پاس تھی، اس لیے بہت سے عرب یہاں تک کہ انیک شروادی بھی یہودی ودوانوں کے پاس جاتے تھے۔ اس وجہ سے یہودی سوئم کو ودوان و جانکار اور دوسروں کو اجانی سمجھتے تھے اور دوسروں پر گرو کرتے تھے۔ یہودی سوئم کو ایشور گیان کا خزانہ سمجھتے تھے۔
یہودی چونکہ سوئم کو دوسروں سے شریشٹھ سمجھتے تھے، اس لیے آسمانی کتاب توریت میں جو کچھ تھا اس کی ویاکھیا وے اپنے حساب سے کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ انتم پیغمبر یا ایشوریہ دوت کو بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے تھا، تاکہ اس راستے سے وہ دوسری قوموں اور جاتیوں پر سوئم کو شریشٹھ سمجھے۔ پرنتو پیغمبر اسلام کا جنم قریش قبیلے میں ہو گیا، جس سے یہودیوں کی اپیکشاؤں پر پانی پھر گیا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ ان کی اپیکشاؤں پر پانی پھر گیا ہے تو انہوں نے پیغمبر اسلام کا ورودھ کرنا آرمبھ کر دیا، اور یہودیوں نے آسمانی کتاب توریت میں بڑی آسانی سے ہیرا پھیری کر دی۔ یہی نہیں، یہودیوں نے ان باتوں کو بھی توریت میں شامل کر دیا جو جھوٹی اور غلط تھیں۔ اس پرکار سے اب کوئی بھی پورے وشواس سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو باتیں توریت میں ہیں وہ شت پرتیشت ایشوریہ باتیں ہیں۔
توریت میں انتم ایشوریہ دودھ کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں، پرنتو یہودیوں نے انہیں توریت سے ہٹا دیا اور ان کے استھان پر کچھ دوسری چیزوں کو شامل کر دیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ پائے کہ حضرت محمد ہی انتم ایشوریہ دوت ہیں۔ یہودی ودوانوں نے تورات میں لکھ دیا کہ کئی سالوں بعد انتم ایشوریہ دوت کا جنم ہوگا۔ عام یہودی پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ودوانوں دوارا بتائے گئے راستوں کا انوسرن کیا اور پیغمبر اسلام اور ان کے دوارا بتائی گئی جیوندائک شکشاؤں سے دوری کی۔
مہان ایشور نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمست وشواسیوں کے لیے اپنا دودھ بنا کر بھیجا۔ پیغمبر اسلام کا جنم عرب میں ہوا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیول عربوں کے ہی پیغمبر تھے۔ پیغمبر اسلام پوری دنیا کے پیغمبر ہیں، اس لیے وہ سبھی لوگوں کے ساتھ کسی بھی پرکار کے بھید بھاؤ کے بنا سمان ویوہار کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام دن رات لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچتے تھے، لوگوں کی برائی اور ابھدر ویوہار کا کبھی بھی ابھدر جواب وہ نہیں دیتے تھے۔ وہ ایشوریہ سدگنوں کی پرتی مورتی تھے۔ لوگوں کی برائی کا بدلہ وہ بھلائی سے دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے ویوہار میں جادو تھا، بلکہ ان کا ویوہار ہی جادو تھا۔ جن لوگوں نے اسلام دھرم سویکار کیا ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہیں کافروں اور انیکیشور وادیوں نے بہت ستایا اور کشت پہنچایا، پرنتو وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے دل مہان ایشور کے پریم سے بھرے ہوئے تھے۔
سارانش یہ کہ پیغمبر اسلام سمست لوگوں کے پیغمبر تھے، یہاں تک کہ جو یہودی سوئم کو دوسروں سے شریشٹھ سمجھتے تھے ان سے پیغمبر اسلام فرماتے تھے، جو گیان تم نے تورات سے حاصل کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ پیغمبر اسلام کی اس بات سے یہودی بہت کرودھت و ناراض ہوتے اور جواب میں کہتے تھے کہ آپ کس طرح ہمارے گیان کو بہت کم سمجھتے ہیں، جبکہ تورات ہمارے پاس ہے۔ یہ کتاب ایشوریہ گیان کا خزانہ ہے، جس کے پاس تورات ہے اس کے پاس بہت ادھک برکت و بھلائی ہے، اور اس سمے یہ کتاب ہمارے پاس ہے۔ اس آدھار پر ہمارا گیان کم نہیں ہے۔ یہ وہ سمے تھا جب پوتر قرآن کے سورہ کہف کی آیت نمبر 109 نازل ہوئی۔ اس آیت میں مہان ایشور کہتا ہے، ہے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر ہمارے پالنہار کی باتوں کو لکھنے کے لیے پورا سمندر بھی سیاہی بن جائے تو ہمارے پالنہار کی باتوں کو پورا ہونے سے پہلے سمندر ختم و سوکھ جائیں گے، اور ہم جتنا بھی سمندر پیدا کر دیں۔
پیغمبر اسلام کے کال میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں تھا جو پیغمبر اسلام سے وشیش شردھا نہ رکھتا ہو۔ مسلمان پیغمبر اسلام کی خوشی کو ایشور کی خوشی اور ان کی ناراضگی کو ایشور کی ناراضگی سمجھتے تھے۔ پیغمبر اسلام کا کتھن ہے کہ جس نے ایک مومن کو پرسن کیا اس نے مجھ کو پرسن کیا، اور جس نے مجھے پرسن کیا اس نے ایشور کو پرسن کیا۔ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث اس بات کی سوچک ہے کہ ایک مومن کی خوشی اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کا کارن ہے۔ اتہ مہان ایشور پر آستھا و ایمان رکھنے والے انسانوں کو مومن کو خوش کرنے کا یتھا سمبھو پریاس کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کے کال میں ایک مسلمان تھا جو ہمیشہ نیک کام کرنے میں آگے آگے رہتا تھا۔ جب کوئی کارکرم ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے وہاں پہنچ جاتا تھا۔ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہوتی تو وہ دوسروں پر پہل کرتا تھا۔ اسی طرح جب رن کھیتر میں جا کر جہاد کرنے کی بات آتی تھی تو اس میں بھی وہ سنکوچ سے کام نہیں لیتا تھا۔ نکٹ سمبندھیوں سے سمبندھ رکھتا تھا، ان کے ادھیکاروں کو وہ ادا کرتا تھا، سب کے ساتھ بہت اچھا و پریم پورن ویوہار کرتا تھا، پڑوسیوں کی بھی وہ مدد کیا کرتا تھا۔
سارانش یہ کہ اس نے سب کے نکٹ بہت اچھی چھوی بنا رکھی تھی اور سبھی اس کا آدر سمان کرتے تھے۔ اس پرکار کے سمست کاریوں سے اس کا ادیش مہان ایشور کی پرسنتا تھی، پرنتو جب بھی دوسرے لوگ اس کی پرشنسا کرتے تھے وہ پرسن ہوتا تھا۔ جب لوگ اس کی پرشنسا کرتے تھے تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ اور اس کی پرشنسا کرے، اس کی خوبیوں کو بیان کریں۔ وہ اپنی غلط اچھاؤں سے مقابلہ کرنے کا پریاس کرتا تھا، پرنتو وہ ایسا نہیں کر پاتا تھا، اور جب دوسرے اس کی پرشنسا کرتے تھے تو وہ خوش ہوتا تھا۔ وہ اپنے اندر کی حالت کو سمجھ گیا کہ اگر یہی حال رہا تو اس نے جو بھی نیک کام کیا ہے سب برباد ہو جائے گا۔ اس آدھار پر اس نے اس آتمک بیماری کا علاج کرنے کی سوچی۔
یہ سوچ کر وہ پیغمبر اسلام کی سیوا میں اپستھت ہوا اور اس نے کہا کہ ہے ایشوریہ دوت، میں نے جو سمست اپاسنائیں انجام دی ہیں اور حرام کاریوں و پاپوں سے پرہیز کیا ہے، ان سب سے مہان ایشور کی پرسنتا کے علاوہ میرا کوئی دوسرا ادیش نہیں تھا اور نہ ہے، پرنتو اس سمے سے اللہ کی شرن چاہتا ہوں جب لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں پرنتو جب دوسرے لوگ میری پرشنسا کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں پرسن ہو جاتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے اندر کی جو یہ حالت ہے اس کا انجام کیا ہوگا، کیا جو یہ خوشی ہے اس سے میری نشٹھا کو کوئی نقصان پہنچتا ہے؟
اس پر پیغمبر اسلام کچھ شنوں کے لیے مون دھارن کیے رہے اور وہ آیت اترنے کی پرتیکشا کرنے لگے۔ یہ وہ کشن پر سمے تھا جب مہان و سرو سمرتھ نے سورہ کہف کی 110 آیت نازل کی، जिसका अनुवाद यह है, जो अपने पालनहार से मुलाकात का इच्छुक है उसे शुद्ध नियत के साथ अमल अंजाम देना चाहिए और किसी को भी उसका समतुल्य व सहभागी करार नहीं देना चाहिए।
यद्यपि यह संभव है कि कोई अच्छा काम करे और दूसरे लोग उसके उस अच्छे काम की प्रशंसा करें, परंतु नेक करने वाले इंसान को दूसरों की तारीफ की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो इंसान दूसरों की तारीफ के लिए अच्छा काम करता है, वास्तव में वो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों की खुशी के लिए ऐसा करता है। दूसरे शब्दों में रियाकारी और दिखावा एक प्रकार का शिर्क है और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। जो इंसान रियाकार होता है वो दूसरों की प्रशंसा की प्रतीक्षा में रहता है, प्रशंसा करने पर वो खुश होता है और अधिक नेक काम करने लगता है क्योंकि उसे दूसरों की तारीफ का इंतजार रहता है।
बहरहाल महान व सर्वसमर्थ ईश्वर से दुआ है कि हम सबको शुद्ध नियत के साथ नेक काम करने की कृपा करे। आमीन।
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔ شروتاؤ، تازہ اور وستر خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔Thank you.